बहुत धन्यवाद। पूज्य राधारमण महाराज, आपने सुंदर तरीके से वर्णन किया जो पूरा कृष्ण जन्म का बैकग्राउंड है, इतिहास है, किस तरह से भगवान के जन्म की तैयारी हो रही थी देवताओं द्वारा। तो बहुत सुंदर रूप से हमने इसका श्रवण किया है। और एक बात जो महाराज ने कही कि परीक्षित महाराज बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए लगातार श्रवण कर रहे थे, तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आज के दिन हम थोड़ा लंबा प्रवचन के लिए तैयार रहे। एक प्रवचन हो गया, दूसरा प्रवचन। तो वैसे आज के एक दिन हम प्रयास करें हमारे शरीर के कष्टों को सहन करने के लिए, और ज्यादा ध्यान भगवान की कथा पर हम केंद्रित करने का प्रयास करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे भगवान श्री कृष्ण के गुण जो हैं वो तो असंख्य हैं, इनकी गणना तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान ही अनंत हैं। परंतु सारे शास्त्रों से, शास्त्रों का अभ्यास करके, उनका अध्ययन करके श्री रूप गोस्वामी ने जो 64 प्रमुख गुण हैं उनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में किया है। और इन गुणों का वर्णन हम पिछले कई दिनों से सुनते आए हैं, और आज के दिन इन 64 गुणों में से आखिरी 8 गुणों के बारे में हम आज श्रवण करेंगे। 56 गुण आज तक, कल तक चर्चा हुई थी, आज हम प्रारंभ करेंगे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्नकर्ता 57 क्रम में। तो भगवान श्री कृष्ण वो हैं जिनसे असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से पुष्टि करके यहां कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने महान हैं कि उनके सामने ब्रह्मा जी जो हैं वो बहुत तुच्छ हैं। स्वयं ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, क्वाहम तमो महत अहम ख चराजर वार्भो, कहां मैं जो कि इस भौतिक जगत में अटक के पड़ा हूं। और इस भौतिक जगत में क्या है? तमो, ये जो भौतिक सृष्टि है इसमें महत सारी भौतिक शक्ति है, और 8 पदार्थों से बनी हुई ये बना हुआ जो ब्रह्मांड है, सर्वेष्टिता, इनसे मैं घिरा हुआ हूं, इन सारे 8 पदार्थों से। अंड घट सप्त वितस्ति काय, अंड घट, अंड मतलब ये ब्रह्मांड, घट मतलब एक मटका, तो ये मटके जैसे, घट जैसे ये एक अंड है, ये ब्रह्मांड है, कितना बड़ा है मेरा शरीर, इसके अंदर सप्त वितस्ति मतलब 7 हाथों जितना लंबा। वैसे किसी भी प्राणी का जो शरीर होता है अपने हाथों के मात्रा से गिना जाता है, 4 हाथ लंबा या 7 हाथ लंबा इत्यादि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं कौन हूं, क्व अहम, मेरा क्या स्थान है, मैं ऐसे भौतिक ब्रह्मांड में अटक के पड़ा हूं और मेरा शरीर छोटा ही है, लेकिन क्व महित्वम, लेकिन आपकी महिमा क्या है। इद्रिक विध अवगणिता अंड पराणुचर्या वतार्थ रोम विवरस्यचते, वो कहते हैं कि आपके रोम विवर मतलब आपके जो शरीर, जो त्वचा के छिद्र हैं जिनसे रोम निकलते हैं, उनमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा होगा कि खिड़की से सूरज की किरणें आते हैं तो धूली के छोटे छोटे कण हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके दिव्य त्वचा से शरीर से ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो ये आप हैं और मैं कौन हूं, मैं ऐसे एक छोटे से ब्रह्मांड के भीतर एक छोटा सा व्यक्ति हूं। अब ब्रह्मा जी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सृष्टि करता है, सबसे पुण्यवान व्यक्ति है इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर। कई जन्मों के पुण्य के पश्चात उनको ये शरीर प्राप्त हुआ है। उन ब्रह्मा जी जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में नहीं है। सारे सृष्टि का निर्माण करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके सामने मैं तो तुच्छ हूं, कुछ भी नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सारे मनुष्यों के लिए एक बहुत सोचने लायक बात है, और विशेष करके वो लोग जिनको जो अपने पद से या जो अपने ऐश्वर्य से उन्मत्त हो जाते हैं उनके लिए ये सोचने लायक बात है। जब ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं तो हमारी बात क्या है। भगवान महाविष्णु के रूप में जब कारण सागर में शयन करते हैं तो जब वो सांस बाहर लेते हैं तो उनके सांस के बाहर लेते लेते अनंत कोटि ब्रह्मांड बीज रूप में उनके शरीर से प्रकट होते हैं और बाहर की ओर निकलते हैं। और जैसे वो बाहर की ओर जाते हैं तो ब्रह्मांड बड़े होते जाते हैं और उनके अंदर जो है विकास होने लगता है। स्वयं वही महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में हरेक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं और फिर उस सारे ब्रह्मांड का विकास होता है, ब्रह्मा जी आदि का जन्म होता है। और फिर जब महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो फिर सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में समा जाते हैं। यस्यैक निश्वसित कालवथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंबनाथा विष्णु महांस यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि आप महाविष्णु के रूप में शयन करते हैं। महाविष्णु तो आपके कला विशेष हैं, अंश के अंश हैं। लोम विल मतलब जो जिन क्षेत्रों से लोम या रोम निकलते हैं उनसे जड़ या उनसे जन्म लेते हैं का अनंत कोटि ब्रह्मांड। यस्य निश्वसित आपके सांस से ये सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और ये महाविष्णु जो इतने विशाल हैं इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ये विशाल महान महाविष्णु आपके केवल अंश के अंश है, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। फिर 58 नंबर का गुण भगवान श्री कृष्ण का है कि वो सर्व अवतारी है। सारे अवतार जो हैं भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही ये वर्णन आता है कि अन्य जितने भी भगवान के रूप हैं वो अवतार माने जाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं, अंश या कला, कला मतलब अंश के अंश। परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो अवतारी कहलाते हैं। श्री राजीव गोस्वामी ने षट संदर्भों में इस बात की व्याख्या, इसका विश्लेषण बड़े सुंदर ढंग से किया है। उन्होंने कहा है कि अवतारी कृष्ण और अवतार कृष्ण, इन दोनों में भिन्नता जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक भी हैं, अचिंत भेदाभेद तत्व, जैसे महाप्रभु ने सिखलाया है। भगवान श्री कृष्ण और उनके विभिन्न अवतारों में एक दृष्टि से देखा जाए तो अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी सब भगवान ही हैं, अलग अलग भाव में वो प्रकट हुए हैं। परंतु भिन्नता भी है। तो भिन्नता ये है कि श्री कृष्ण इन सारे अवतारों के उद्गम हैं। श्री कृष्ण अवतारी हैं और उनमें सारे अन्य जो विष्णु तत्व रूप हैं वो समाये हुए हैं। जब श्री कृष्ण यहां वृंदावन में प्रकट हुए तो उनके शरीर के भीतर अनंत अवतार भगवान के हैं, वो सब शामिल थे। तो सारे अवतार, जितने भी आप अवतार हैं उनके बारे में सोचिए, चाहे वो वैकुंठ के नारायण रूप हो, वासुदेव, संकर्षण, प्रत्युम्न, अनिरुद्ध, चाहे वो मत्स्य अवतार, वामन अवतार, जितने भी अवतार हैं, वो समस्त अवतार श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विद्यमान थे। लेकिन श्री कृष्ण कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। ये अन्य अवतार, इनके विभिन्न स्थान होते हैं लीला के लिए, लेकिन श्री कृष्ण का विशेष अवतारी कृष्ण केवल वृंदावन में वास करते हैं। श्री कृष्ण अवतारी कृष्ण, उनका एक ही कार्य है और वो है रमण करना, और उनका दूसरा कोई कार्य नहीं है। ब्रह्मांडों का निर्माण करना, असुरों का वध करना, धर्म की संस्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, ये सब कृष्ण का कार्य नहीं है, अवतारी कृष्ण का कार्य नहीं है, ये सारे अवतार कृष्ण के कार्य हैं। जब वृंदावन में श्री कृष्ण ने असुरों का वध किया तो ये वध का कार्य जो है ये अवतारी कृष्ण ने नहीं किया, श्याम सुंदर गोविंद ने नहीं किया, वरन उनके भीतर जो वासुदेव कृष्ण है, जो अवतार कृष्ण है, उन्होंने वध किया। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये कौन है? ये अवतार कृष्ण है, अवतारी कृष्ण नहीं है। अवतारी कृष्ण क्योंकि केवल रमण करते हैं, उनको इन ऑफिशियल कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृष्ण का और एक नाम है राम। हमारे महामंत्र में जो हरे राम शब्द आता है तो साधारण अर्थ, इसके तीन अर्थ दिए जाते हैं राम शब्द का। एक तो है बलराम, दूसरे हैं रघुपति राम अयोध्यावासी, और तीसरे हैं परशुराम। परंतु हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ इस राम शब्द का दिया जाता है, और वो है राधिका रमण राम, अर्थात कृष्ण। जो रमण करते हैं श्री कृष्ण, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। तो राम शब्द अवतारी कृष्ण को भी संबोधित करता है। एक बार एक सज्जन यहां भारत में आए थे भगवान की खोज में, तो जगह जगह गए, अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए, अलग अलग मंदिरों में गए, मठों में गए, और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री कृष्ण ही भगवान है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा देवी के मंदिर में गया, दुर्गा देवी की मूर्ति देखी, उनकी तस्वीर देखे, बड़ा भयानक स्वरूप था उनका, त्रिशूल धारण किए हुए महिषासुर का वध कर रहे थे। कहीं और गया, शिवजी की तस्वीर देखी, वो तो बड़े ध्यान में मग्न है। तो ऐसे में जगह 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 गया, अनेक मूर्तियां तस्वीर वगैरह मैंने देखे, लेकिन जब श्री कृष्ण की तस्वीर मैंने देखी, श्री कृष्ण की मूर्ति देखी मैंने, वो क्या कर रहे हैं? केवल बांसुरी बजा रहे हैं और श्रीमती राधारानी के साथ रमण कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यही भगवान है, जिनका काम केवल रमण करना है, एंजॉय करना है बस, और कोई सरदर्द का काम नहीं लेते, वो मैनेजमेंट वगैरह के झंझट में नहीं पड़ते। श्री कृष्ण अवतारी कृष्ण इस कार्य में नहीं पड़ते। तो मैनेजमेंट तो जरूरी होता है, किसी को तो करना चाहिए। अब इतने सारे ब्रह्मांडों का निर्माण जब हुआ है तो किसी को देखभाल तो करना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, हमें तो नहीं करना है, हमें तो केवल गोलोक वृंदावन में रमण करना है। तो अपने आप को विस्तार कर देते हैं, अवतार कृष्ण हो जाते हैं, और ये अवतार कृष्ण जो हैं, फिर ये ब्रह्मांडों में विभिन्न कार्य कर देते हैं, चाहे वो साधुओं की रक्षा करना हो, दुष्टों का विनाश करना हो, धर्म की संस्थापना करना हो। यहां तक कि कुरुक्षेत्र में जो भगवत गीता का उपदेश दिया भगवान ने, वो अवतार कृष्ण वासुदेव ने दिया। अगर वृंदावन में श्री कृष्ण को उपदेश देते तो कोई ब्रजवासी सुनते भला? गोपियां सुनती क्या? अगर श्री कृष्ण पर भाषण देने के लिए जाते कोई गोपियों को, देखो तत्व ज्ञान ऐसा है, गोपियां क्या कहती? बस हमें नहीं सुनना है। अवतारी कृष्ण कोई उपदेश दे भी नहीं सकते, अगर वो चाहते भी हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहां भाव अलग है वृंदावन में। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं तो उनके अंदर जो सारे अवतार विद्यमान होते हैं, तो अलग अलग समय पर ये अवतार जो है कार्य करते हैं। गोलोक वृंदावन में असुरों का वध नहीं होता क्योंकि वहां पर असुर है ही नहीं, लेकिन यहां भौम वृंदावन में जब उसी गोलोक वृंदावन का प्राकट्य इस धरातल पे होता है तो यहां पर कई असुर आ जाते हैं भगवान की लीलाओं को और आस्वादनीय बनाने के लिए और रमणीय बनाने के लिए। तो यहां पर जब असुर आते हैं तो अवतारी कृष्ण कुछ नहीं करते, वो तो रमण करते हैं और अंदर से जो है वो प्रकट हो जाते हैं। जब पूतना का वध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान करके पूतना के प्राण खींच दिए, तो इतने जोर से खींच दिया, स्तनपान किया कि प्राण ही निकल गए। अभी अवतारी कृष्ण इतने जोर से ऐसा उनकी इतनी ताकत का प्राकट्य नहीं करते हैं। ये कार्य वासुदेव कृष्ण ने किया और सारे ब्रजवासी जब बाहर मैदान में चले गए, गोचर भूमि में बाहर चले गए देखने के लिए कि कृष्ण कहाँ है, उन्होंने देखा कि पूतना का 8 मील लंबा शरीर था वहां, राक्षसी शरीर। पूतना अपने सुंदर मनुष्य रूप में स्त्री का जो रूप है उसको धारण नहीं कर पाई वो दर्द के मारे, और उस समय श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह है उन विशाल पहाड़ जैसे स्तनों के ऊपर रमण कर रहे थे, मानो कि उस बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है कि कोई खतरा है या क्या है, मासूम बच्चे के समान वहां लीला कर रहे थे। इस प्रकार जीव गोस्वामी बताते हैं कि अवतारी कृष्ण और अवतार कृष्ण में भिन्नता को जानना बहुत आवश्यक है। जब कंस ने अक्रूर को भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम को यहां लेकर आओ, मलयुद्ध की योजना यहां पर की गई है, तो अक्रूर जी ने सोचा कि चलो अच्छा अवसर मिल गया कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए, तो अक्रूर बड़े कठिनाई से कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए। और जब अक्रूर घाट, जो आज अक्रूर घाट नाम से वो जगह प्रसिद्ध है, जो वृंदावन मथुरा के सीमा तट पर है, उस स्थान पर जब पहुंचे यमुना के किनारे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा अब जलपान किया जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, तो वहां उन्होंने रथ रोक दिया, कृष्ण बलराम उतरे, उन्होंने जलपान किया, यमुना के शीतल जल का पान किया और फिर से आके रथ में बैठ गए। और फिर अक्रूर उतरे, अक्रूर जी ने उतर के फिर यमुना जी के भीतर गए, अपने कमर तक खड़े हुए प्रार्थनाएं कर रहे थे, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, और अचानक उन्होंने कृष्ण बलराम को जल के भीतर देखा। तो उन्होंने सोचा अरे ये कैसे हुआ, अभी अभी तो मैं उनको रथ के ऊपर बिठाकर यहां जल के भीतर आया, तो अब ये वहां से यहां कैसे आ गए। तो फिर से वो जल्दी से रथ में वापस गए तो देखा कि कृष्ण बलराम वहीं बैठे हैं। फिर थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, पुनः जल में आए और उस समय उन्होंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। और वो दृश्य क्या था कि वहां पर अनंत शेष, जो बहुत सुंदर लग रहा है, उनके अनंत फणों से भगवान महाविष्णु के रूप में उनके ऊपर शयन कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। और दोनों अनंत शेष और महाविष्णु की सेवा में उपस्थित थे भगवान के अनेक सेवक, जितने भी बड़े ऋषि मुनि हैं, जैसे नारद मुनि हैं, चतुष कुमार हैं, भगवान की समस्त शक्तियां हैं, जैसे श्री भून नील इत्यादि, पुष्टि तुष्टि श्री, सब वहां पर उपस्थित थे और दोनों भगवानों की सेवा कर रहे थे। जब अक्रूर ने यह देखा तो उनका सर चकरा गया और उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। अक्रूर जी की प्रार्थना बड़े सुंदर है और अक्रूर जी की प्रार्थना समाप्त होने के पहले ही भगवान ओझल हो गए, अदृश्य हो गए। फिर जल्दी अक्रूर वापस रथ के ऊपर चले आए और भगवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और भगवान ने पूछा अक्रूर जी से कि अरे ऐसे आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि आपने कोई जल में या आसमान में या भूमि पर कोई अद्भुत दृश्य देखा होगा। तो अक्रूर जी ने उत्तर दिया कि इस जल के ऊपर, आसमान में, भूतल के ऊपर जितने भी अद्भुत चीजें हैं वो सब आपके अंदर हैं, आपके भीतर हैं, आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए जब मैं आपका दर्शन करता हूं तो ऐसे कौन से अद्भुत चीजें हैं जिनका दर्शन नहीं कर रहा हूं। अक्रूर जी ने भी बड़े बुद्धिमानी से उत्तर दिया। भगवान कृष्ण थोड़ा मजाक उड़ाना चाहते थे अक्रूर जी का, लेकिन अक्रूर जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तो ये जो छोटी सी लीला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लीला में हम क्या देखते हैं, इस लीला में अवतारी कृष्ण और अवतारी कृष्ण का जो स्थानांतर हुआ, एक्सचेंज हुआ, ये इस लीला में हम देखते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। अब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा में प्रवेश करने वाले थे, तो मथुरा में कौन गए? अवतारी कृष्ण गए? नहीं, अवतार कृष्ण गए, वासुदेव कृष्ण गए। तो इस समय पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में एक जगह कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भाव प्रकाश में वृंदावन में रह गए और आगे अक्रूर के साथ वासुदेव कृष्ण चले गए। ठीक उसी प्रकार जो मूल बलराम है वो यहीं पर ब्रज में रह गए, वृंदावन में रह गए, और बलराम के विस्तार संकर्षण वासुदेव के साथ मथुरा चले गए और फिर मथुरा से आगे द्वारका, हस्तिनापुर आदि में उन्होंने लीलाएं की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सीमा, ये जो सीमा है जिसके ऊपर अक्रूर घाट है, ये वृंदावन और मथुरा की सीमा है जिसमें परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन है अवतार कृष्ण, अवतारी कृष्ण से अवतार कृष्ण का। श्री रूप गोस्वामी एक बार जब शुरुआत में वृंदावन में आए तो वो सोच रहे थे कि हमें वृंदावन और द्वारका की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए एक ही नाटक में। थोड़े दिनों के बाद जब वो पुरी की ओर जा रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार, तो सत्यभामापुर नाम के एक स्थान में उन्होंने रात में विश्राम किया। उस रात सत्यभामा स्वयं उनके सपने में आई और उन्होंने आदेश दिया कि ये ठीक नहीं है, आपको तो अलग अलग नाटक लिखने चाहिए, एक नाटक में नहीं होना चाहिए वृंदावन और द्वारका की लीलाएं। रूप गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे चल के जब महाप्रभु के साथ में वो थे, एक दिन अचानक बिना कोई कारण के चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा, कृष्णेर बाहिर नहीं करह व्रज होई थे, व्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जाए कहां थे। कृष्ण को व्रज से बाहर ले जाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, कृष्णोन्यो यदि संभूतो यह पूर्णेति सोस्त्यतः परः वृंदावनम परित्यज सब क्वचिन नैव गच्छति। जो वृंदावन में रहने वाले कृष्ण है हे रूप, वो द्वारका में रहने वाले यदु कुमार से भिन्न है। यदु कुमार जो है वो मथुरा द्वारका आदि में लीला करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण केवल वृंदावन में वास करते हैं। हरे कृष्ण, और वृंदावन से कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। स क्वचिन न एव गच्छति। तो रूप गोस्वामी समझ गए कि जो सत्यभामा देवी ने उनको स्वप्न में कहा था उसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर दोहरा रहे हैं। फिर उन्होंने दो अलग नाटक लिखे, एक है ललित माधव जिसमें उन्होंने द्वारका लीला का वर्णन किया, और दूसरा है विदग्ध माधव जिसमें उन्होंने वृंदावन लीला का वर्णन किया। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में निवास करते हैं और जो कि अनंत अवतारों के उद्गम हैं, वो अवतारी कृष्ण हैं, और वृंदावन के निवासियों के प्रेम की वजह से कभी भी वृंदावन को छोड़कर वो नहीं जाते हैं। और यही अवतारी कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिवस में यहां पर प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। ब्रह्मा जी का एक दिवस अर्थात 1000 चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग कहते हैं। जब ये एक चतुर्युग 1000 बार दोहराया जाता है तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो जाते हैं, उनका एक पूरा दिवस, और उतनी ही अवधि है ब्रह्मा जी की एक रात्रि की। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में 1000 चतुर्युगों में एक बार भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं, 14 मन्वंतर होते हैं, और इन 14 मन्वंतरों में से 7वें मनु के समय, 7वें मन्वंतर के 28वें द्वापरयुग के अंत में अवतारी कृष्ण यहां वृंदावन में प्रकट होते हैं। और ये अवतारी कृष्ण केवल 5000 वर्ष पूर्व यहां पर प्रकट हुए। प्रभुपाद जी एक जगह इस केवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल 5000 वर्ष पूर्व या अभी अभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मांड के इतिहास के तुलना से देखा जाए तो 5000 वर्ष जो है वो तो कुछ भी नहीं है। 5000 वर्ष तो मानो अभी अभी का समय है। तो 59वां गुण भगवान श्री कृष्ण का ये है मुक्तिदायक है। वो मुक्तिदायक न केवल भक्तों के लिए परंतु जो उनके शत्रु होते हैं उनके लिए भी। श्रील रूप गोस्वामी ये मुक्ति शब्द का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये एक ऐसा जगत है जिसको पवर्ग कहते हैं, प ब फ म। तो ये जो वर्ण है जब ये प फ ब फ म तो ये प से शुरुआत होने वाले वर्ग है। प का अर्थ है परिश्रम या पराभव, हर हर एक व्यक्ति जो है यहां पे भौतिक जगत में संघर्ष करते करते हार जाता है, कोई भी जीतता नहीं है। या प का अर्थ होता है परिश्रम, और इतना परिश्रम करना पड़ता है उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को, कि उसके मुंह से फेह निकलने लगते हैं फ, और ऐसे गलत कार्य करने की वजह से ब या बंधन उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे बद्ध अवस्था में उसको तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए वो सदा भयभीत रहता है भ। और अंततः उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। म मृति या मृत्यु, तो ये है पवर्ग। तो ऐसे पवर्ग से मुक्ति दिलाने वाले श्री कृष्ण हैं। अपवर्ग प्रदाता, केवल कृष्ण ही हैं जो बद्ध जीवों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव संशयः, कि विष्णु या कृष्ण के अलावा और कोई भी व्यक्ति और कोई भी किसी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि न केवल अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनके प्रति शत्रुत्व की भावना रखते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, उनको भी वो मुक्ति प्रदान करते हैं। साधारणतः उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे असुर वृत्ति लोगों को। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान में लीन हो जाना। दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति होते हैं, एक जो कि भगवान के निराकार ज्योति में प्रविष्ट होना, और दूसरा है भगवान के निजी देह में प्रविष्ट होना, जैसे कि शिशुपाल के साथ हुआ। तो दोनों तरह के सायुज्य मुक्ति भगवान असुरों को भी प्रदान करते हैं, जिनका वध भगवान करते हैं। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि कभी कभी वो ऐसे असुरों को न केवल सायुज्य मुक्ति लेकिन सारूप्य सालोक्य ऐसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं जो कि केवल भक्तों के लिए होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने ही मामा का वध किया, तो उस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद एव रूपम दुर्वापम आप। आप मतलब उन्होंने प्राप्त किया उस रूप को। दुर्वाप मतलब जो बहुत दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। तद एव रूपम, कि भगवान जैसा ही रूप कंस को प्राप्त हुआ। हालांकि कंस भक्त नहीं था भगवान का, कंस तो असुर था, द्वेष भावना से भगवान के बारे में 24 घंटे स्मरण करता था, लेकिन फिर भी जब भगवान ने उसका वध किया तो उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। और पूतना को तो उन्होंने एक धात्री का स्थान अपने गोलोक वृंदावन में दे दिया। तो कभी कभी न केवल सायुज्य मुक्ति लेकिन भगवान सारूप्य सालोक्य आदि मुक्ति भी इन असुरों को प्रदान कर देते हैं। 60वां गुण भगवान का ये है कि वो आत्माराम आकर्षक है। जो मुक्त पुरुष हैं उनको भी वो आकर्षित करते हैं। एक दो महीने पहले यहां पर इसी हिंदी भागवत क्लास में ये आत्माराम श्लोक के ऊपर कई दिनों तक चर्चा चल रहा था। आत्मारामाश्मनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हितकुहिं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। इत्थं भूत गुणः हरिः, भगवान श्री हरि या कृष्ण के गुण इतने इत्थं भूत, इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत और आकर्षक हैं कि वो ऐसे मुक्त पुरुष, आत्म साक्षात्कार पुरुष, ब्रह्म भूत अवस्था में स्थित होने वाले पुरुषों को भी आकर्षित करते हैं। इसके बारे में कई उदाहरण हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, वो तो ब्रह्मवादी थे। स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानाम यत अधीतवान। वो कहते हैं परिनिष्ठित, कि मैं स्थित था, बड़े मजबूती से मैं स्थित था। अपि नैर्गुण्य, नैर्गुण्य मतलब जो इन भौतिक गुणों से परे है, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो। मैं ब्रह्म में बड़े शक्ति से स्थित था, फिर भी अपि उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, लेकिन जब से मेरे चित्त ने मैंने भगवान श्री कृष्ण जो उत्तम श्लोक है इनकी लीलाओं को मैंने ग्रहण कर लिया तो फिर मेरा मन मेरा चित्त जो है उसका परिवर्तन हो गया। इसलिए आख्यानम यद अधीतवान, आख्याना मतलब इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करना मैंने शुरू कर दिया। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे लेकिन वेद व्यास जी के शिष्यों द्वारा सुनाए गए भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन जब उन्होंने सुना तो उनका मन परिवर्तित हो गया। ठीक उसी प्रकार से बिल्वा मंगल ठाकुर, वो भी एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य भक्त रहे, उन्होंने भी एक जगह कहा है, अद्वैत विधि पथि के उपास्या स्वानंद सिंहासन लक्ष दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं अद्वैत विधि पथिकैर कि अद्वैत पथ में चलने वाले लोग जो हैं, मैं इस उपासना में जो लोग लगे हुए हैं उपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा, मैंने इस पथ में दीक्षा ली थी सिंहासन, और लोग मेरी उपासना करते थे कि मैं इतना आगे बढ़ा हुआ एक ऋषि हूं अद्वैत पथ में, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। क्या हो गया? शठेन केनापि वयम हठेन, मेरे साथ मेरा एक संपर्क हुआ शठेन, एक शठ के साथ, एक धोखेबाज के साथ मेरा संपर्क हुआ जिसने हठेन जबरदस्ती मेरे को दासी कृता, मेरे को उनका दासी बना दिया। और वो कौन है? वो है गोप वधु विटेन, वो व्यक्ति जो गोप वधु उनके साथ हंसी मजाक करते हैं अर्थात श्री कृष्ण। तो हालांकि मैं ब्रह्म पथ में मग्न था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर इस गोप वधुओं के साथ हंसी मजाक करने वाले जो लड़का है इसने जबरदस्ती मेरा मन आकर्षित कर लिया और मुझे उनका दासी बना दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे चतुष कुमार भी हैं, वो भी ब्रह्मवादी थे और केवल भगवान के चरण कमलों से जो तुलसी मंजरी थे उनके सुगंध से आकर्षित होकर जो चतुष कुमार हैं वो भी भगवान के भक्त हो गए। तो ये 60 गुण हुए भगवान के। अब चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो वो कहते हैं कि जो पहले जो 50 गुण हैं जिनका वर्णन आगे चल के रूप गोस्वामी पाद करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये 50 गुण जो है बिंदु बिंदु तया बिंदु मात्र में लेश मात्र कण मात्र ही जीवों में पाए जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सारे गुण परिपूर्णतया पूर्ण संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, पहले 50 गुण। और उसके बाद के जो 5 गुण हैं वो साधारण जीवों में नहीं है, अंशेन गिरिशादिषु, केवल अंश मात्र में ये 5 गुण जो हैं वो गिरिश अर्थात शिव जी आदि अर्थात जो बड़े बड़े देवता हैं, विशेष देवता हैं, सारे देवता नहीं, जैसे शिव जी हैं ब्रह्मा जी हैं, इनमें ये 5 गुण पाए जाते हैं अधिक, और वो केवल अंश मात्र। भगवान श्री कृष्ण तो परिपूर्णता में ये गुण होते हैं। तो उसके बाद के जो 5 गुण हैं वो शिव जी ब्रह्मा जी आदि में भी नहीं है, लेकिन वो वैकुंठ में वास करने वाले नारायण में विद्यमान हैं। लेकिन नारायण में होते हुए भी ये जो अधिक 5 गुण हैं जो शिवजी आदि में भी नहीं है वो श्री कृष्ण के अंदर बड़े अद्भुत सुंदर रूप से वो वहां पर प्रकट हैं। तो ये पहले 60 गुण नारायण तक ये होते हैं, परंतु 61 से लेकर 64 गुण में ये चार जो गुण हैं ये नारायण में भी नहीं पाए जाते हैं, केवल भगवान कृष्ण के अंदर पाए जाते हैं। अवतार कृष्ण में नहीं, केवल अवतारी कृष्ण में पाए जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इन चार विशेष गुणों का वर्णन करते हैं। ये अवतारी कृष्ण के चार मधुर गुण हैं। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, त्रिजगन मनसाकर्षी मुरली कलकूजित, असानोर्ध रूपश्री विस्वापित चराचर। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि। वारिधि मतलब सागर, कल्लोल मतलब लहरें। तो भगवान श्री कृष्ण एक समुद्र के समान है, जिस समुद्र में कौन सी लहरें हैं, लीला कल्लोल, लीला रूपी लहरें उनके अंदर हैं। समुद्र के अंदर कितनी लहरें होती हैं, एक दो दस सौ हजार, कितने होते हैं, असंख्य लहरें होते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे समुद्र हैं जिनमें असंख्य लीलाओं के तरंग जो है वो बह रहे हैं। और किस तरह की लीलाएं हैं ये, सर्व अद्भुत चमत्कार, चमत्कार कराने वाली, अद्भुत, सारे ब्रह्मांड के लोगों को आकर्षित करने वाले, विस्मित करने वाले ये लीलाएं हैं। तो ये भगवान का 61वां गुण है जिसको लीला माधुर्य कहते हैं, लीला माधुरी या लीला माधुर्य। और आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, मधुर प्रेम, मधुर प्रेम मतलब माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में स्थित होने वाले मंडित प्रिय मंडल, भक्तों का मंडल। भगवान श्री कृष्ण सदैव घिरे हुए रहते हैं किनसे, जो मधुर प्रेम का आस्वादन करते हैं, जो श्रृंगार रस में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रिय मंडल, भक्त मंडल से मंडित रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। तो इसको प्रेम माधुरी कहते हैं, प्रेम माधुर्य। पहला है लीला माधुर्य, दूसरा है प्रेम माधुर्य, क्योंकि प्रेमी भक्तों से वो घिरे रहते हैं। तीसरा है वेणु माधुरी। त्रिजगन मनसाकर्षी मुरली कलकूजित, मुरली कलकूजित, कलकूजित मतलब बहुत ही मधुर ध्वनि। तो मुरली की जो मधुर ध्वनि है वो त्रिजगन मनसाकर्षी, तीनों भुवनों को के निवासियों के मन को आकर्षित करने वाले, मनसाकर्षी, भगवान का मुरली वादन है। तो इसको वेणु माधुर्य कहते हैं। ये तीसरा विशेष गुण है भगवान के अंदर। और असानोर्ध रूपश्री विस्मापित चराचर, चौथा गुण, विशेष गुण, और वो है कि भगवान का सौंदर्य और उनका ऐश्वर्य वो असानोर्ध, मतलब उनके समान भी कोई नहीं है और उनके बढ़कर भी कोई नहीं है, न समान है न ऊर्ध न उनसे बढ़कर। और विस्मापित चराचर, चर और अचर प्राणी दोनों को विस्मित करने वाली है। तो ये है भगवान का सौंदर्य का वर्णन, रूप माधुर्य। तो इस क्रम से लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य में इन चार गुणों का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं। यहां क्रम में थोड़ा अंतर है, तो इसी क्रम में हम संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि वैसे समय काफी हो गया है, तो बड़े संक्षिप्त रूप में इनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। पहला है लीला माधुर्य। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ऐसे तरह तरह के सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। बाल लीला आप नहीं सुनते हैं कहीं भी, कि भगवान नारायण ने कहीं माखन चोरी की होगी या भगवान के किसी अन्य अवतार ने ऐसे बाल लीला, सुंदर सुंदर बाल लीला की होगी। हाँ, जैसे राधा रमन महाराज बता रहे थे, भगवान के अन्य तो अवतार हैं जैसे महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और श्री रामचंद्र, इनमें थोड़ा बहुत इनका एक झलक हमें मिलता है। महाप्रभु तो अवतारी कृष्ण है, वो अवतार नहीं है। प्रभु रामचंद्र अवतार है, परंतु चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण दोनों ही अवतारी है। इसलिए बाल कृष्ण की जो लीला यहां पर है और जो बालक निमाय ने नदियों में प्रकाशित किए, वो दोनों ही बहुत ही मधुर हैं। लेकिन जो अन्य अवतार हैं, इनके बारे में हम नहीं सुनते हैं कि ऐसे उन्होंने सुंदर बाल लीलाएं की। इनके अलावा भगवान के लीलाओं के शिरोमणि वो है भगवान की रास लीला। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुराणों में कि मैंने वृंदावन में आके कई लीलाएं प्रदर्शित किए, लेकिन जब मैं मेरी रास लीला के बारे में सोचता हूं तो मेरा मन फिर से इच्छित हो जाता है कि इस लीला को मैं फिर से करूं। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने रास लीला से आकर्षित हो जाते हैं। अन्य जगह एक भक्त कहते हैं, हां मैं भगवान नारायण को जानता हूं और भगवान के विभिन्न अवतारों को भी जानता हूं, और इन विभिन्न अवतारों ने कई सुंदर लीलाएं प्रकट किए हैं और ये बड़े आकर्षक हैं और इनके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब मैं श्री कृष्ण के रास लीला के बारे में सुनता हूं तो मेरे अंदर एक विशेष दिव्य आनंद की उत्पत्ति होती है जो अन्य लीलाओं को सुनने में नहीं होता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का लीला माधुर्य। फिर अगला गुण है प्रेम माधुर्य। विशेष करके भगवान श्री कृष्ण घिरे हुए रहते हैं अपने भक्तों से, गोपियों से विशेष करके। तो उपाध्याय जी कहते हैं कि कृष्ण कभी भी अकेले नहीं होते हैं, जैसे एक राजा कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ उसके मंत्री रहते हैं, उसके सेनापति रहते हैं, तरह तरह के सेवक रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा अपने भक्तों से घिरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं तो कौन से भक्त हैं जो भगवान कृष्ण को घेर भी लेते हैं? जब अपने घर में होते हैं तो अपने माता पिता लाड़ प्यार करते हैं श्री कृष्ण से, जब गोचारण लीला करते हैं तो अपने प्रिय गवों से और अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए रहते हैं, और जब वो रासलीला आदि करते हैं तो अपने गोपियों से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन विशेष करके ये प्रेम माधुरी उनको संबोधित करता है जो कि उनके सबसे प्रिय है, और वो हैं गोपियां। श्रील रूप गोस्वामी ऐसे कई उदाहरण देते हैं और उनमें से एक श्लोक का वर्णन विशेष करके वो कहते हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं कि गोपियां इतने विशेष क्यों हैं। दशम स्कंद के 35वें अध्याय में गोपियां कहती हैं, अटति यद भवान अहनि काननम त्रुते युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिलकुंतलम श्री मुखम चते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्मकृतृषाम। गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं, अटति यद भवान अहनि काननम। अटति यद, जब आप जाते हैं अहनि दिन के समय, काननम वन में, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, और हम आपको ऐसे समय अपश्यताम देख नहीं पाते हैं, तो एक त्रुटि जो कि क्षण से भी कम होता है वो एक युग के समान हमें प्रतीत होता है। और उस समय हम आपका जो सुंदर मुखारविंद है जो कि कुटिल कुंतलम जो कि अलका से आपके बाल के अलका से सुशोभित होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो हम ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है उनको कोसते हैं। जड़ उदीक्षताम पक्षम कृत्रिषाम, इन पलकों को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो जड़ बुद्धि के हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि नेत्रों का जो सही कार्य क्या है। नेत्रों का प्रयोजन एक ही है कि श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को देखें, लेकिन बार बार पलकें जो है बंद खुले खुले बंद होते रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन में बाधा आ जाती है, इसलिए हम बड़े विचलित हो जाते हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन पलकों को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो जड़ बुद्धि के हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब गोपियां श्री कृष्ण को नहीं देख पाती थीं तो विचलित हो जाती थीं कि हम नहीं देख पा रहे हैं, और जब श्री कृष्ण को देखती तब भी विचलित हो जाती थी क्योंकि श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह विरोधाभास है कि देखते हुए या नहीं देखते हुए हर समय गोपियां ऐसे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया करती थी। इससे हम समझ सकते हैं श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों का प्रेम कितना तीव्र है। इसलिए ये एक बहुत विशेष गुण है भगवान श्री कृष्ण का कि गोपियों जैसे भक्तों से वो सदैव घिरे हुए रहते हैं। और गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं कि जब हमने ये रासलीला की है तो ये एक रात तो बहुत ऐसे लग रहा है कि मानो एक क्षण है, ये पृथ्वी लोक की एक रात की बात तो दूर है, अगर ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती तब भी ये एक रात्रि जो है हमें एक क्षण के बराबर प्रतीत होता। फिर आगे वेणु माधुर्य, ये तो भगवान श्री कृष्ण का ट्रेडमार्क है, विशेषता है, मोर पंख दिखाइए बांसुरी दिखाइए तो कोई भी व्यक्ति पहचान जाएगा कि ये श्री कृष्ण के प्रतीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी से क्या प्रभाव होता है अन्यों के ऊपर, इसका सुंदर रूप से वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं दशम स्कंध के 21वें अध्याय में। सारा अध्याय है वेणु गीत, बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। आज तो विस्तार में इसका वर्णन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो बांसुरी वादन है भगवान श्री कृष्ण का, ये शरद ऋतु का सबसे बड़ा आभूषण है। वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु के वर्णन के पश्चात शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, और शरद ऋतु में सब कुछ कितना सुंदर होता है, कितना स्वच्छ होता है, रमणीय होता है वातावरण उस समय। परंतु शरद ऋतु का सबसे आकर्षक जो विषय है वो है श्री कृष्ण का बांसुरी वादन। एक गोपी माता यशोदा से कहती है कि हे गोपी, आपका बच्चा कृष्ण जब बांसुरी बजाता है तो उस समय जो शिव ब्रह्मा इंद्र आदि जो महान देवता हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये ध्वनि क्या चीज है। बहुत प्रयास करते हैं इसका विश्लेषण करने के लिए, उसको समझने के लिए, परंतु असफल रह जाते हैं और फिर हार मानकर अपना सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं उस ध्वनि को और चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं और बड़े गंभीर हो जाते हैं उस ध्वनि को सुनकर। हालांकि ये सारे बड़े बड़े देवता हैं वो संगीत विशारद हैं, सारे रागों को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे तान कुछ कर लेते हैं अपने मुरली में कि इन रागों को इन ध्वनों को वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसी ये ध्वनि है। और आगे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो शिव जी जो कि अपना डमरू बजा रहे होते हैं वो डमरू बजाना बंद कर देते हैं, सुनते रह जाते हैं। और वहां चतुष कुमार बड़े ध्यान में बैठे हुए होते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है, निराकार ब्रह्म को छोड़कर अभी वो भगवान की बांसुरी की ध्वनि को सुनने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने कमलासन के ऊपर स्थित होकर ये सारा मैनेजमेंट की ओर सोच रहे हैं, ये यहाँ कैसे करना, सृष्टि का निर्माण कैसे करना। वो बेचारे अपने मैनेजमेंट के कार्य से बिल्कुल उनका मन जो है विचलित हो जाता है। अनंत देव जिन्होंने अपने अनेक फणों के ऊपर सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है और बड़े गंभीर होकर शांतता पूर्वक बैठे हुए हैं एक जगह, जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो वो भी झूमना शुरू कर देते हैं। जैसे सांप तो झूमते हैं, आपने देखा होगा, तो यूं 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 वो झूमने लगते हैं। और बेचारे इंद्रदेव जब बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो रोने ही लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये ध्वनि क्या चीज है और हृदय में क्या उत्पाद पैदा कर रहा है। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण एक बार बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं तो सारे ब्रह्मांड में उत्पाद हो जाता है। तो फिर यहां वृंदावन में क्या होता होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो वेणुगीत में भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितने भी पशु हैं, जैसे गाय है, हिरण है, पक्षियां हैं जैसे मोर हैं और अन्य भी पक्षियां हैं, वो सब बिल्कुल अवाक हो जाती हैं। वो उनको कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहते, एक जगह में स्तब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े गहराई में विस्तार में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अन्य जगह भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, रंध्राण वेणोर अधर सुधया पूरयन, बरहापीडम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, रंध्राण वेणोर अधर सुधय अपूरयन, कि जो वेणु के अंदर जो छेद हैं वो अपने मुखारविंद से स्पर्श कराते हैं और अपने मुखारविंद से अपने होठों से वो अमृत भरते हैं उन छिद्रों में। इस प्रकार से गोपियां जो हैं वो बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती हैं, जो हमारा अधिकार है इस कंबख्त बांसुरी ने छीन लिया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी लीला है वृंदावन में। तो वेणु माधुरी और अंततः रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य तो अतुलनीय है। हालांकि भगवान विष्णु नारायण भी बहुत सुंदर है अपने जगह में वैकुंठ में, परंतु श्री कृष्ण का जो वृंदावन में रूप है श्याम सुंदर गोविंद का, वो जो सौंदर्य है वो तो कुछ विशेष ही है, जिसके सामने नारायण का सौंदर्य भी कुछ भी नहीं है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत के उद्धव के श्लोक को दोहराते हुए कि जब श्री कृष्ण के ऊपर जो गहने होते हैं, जो कि साधारण व्यक्ति अपने आप को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए स्वीकार करते हैं, वो गहने श्री कृष्ण को सुंदर बनाते ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण पहले से ही इतने सुंदर हैं कि गहने ज्यादा सुंदर हो जाते हैं श्री कृष्ण के ऊपर होने के, गहने सुशोभित हो जाते हैं कृष्ण के दिव्य शरीर से। और ललित माधव में ये वर्णन आता है प्रसंग कि श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल के अंदर जब रहते हैं तो अपने महल के भीतर जो खंभा होता है जो मणियों से वगैरह बना होता है, रत्नों से सुशोभित होता है, वो अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं और अपने आप को इस प्रतिबिंब में देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, आज तक मैंने इतना सुंदर व्यक्ति कभी नहीं देखा। फिर वो सोचने लगता है अरे ये तो मैं ही हूं, और फिर वो कहते हैं कि हालांकि मैं ही हूं लेकिन मुझे इस रूप का ऐसे आलिंगन करने की इच्छा हो रही है जैसे श्रीमती राधा रानी करना चाहती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना है कि वो स्वयं अपने रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए आगे चल के वो चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करते हैं, ताकि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में अपने ही रूप के प्रति वो ऐसे आकर्षण का स्वाद जो है वो अच्छी तरह से ले ले। तो श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद का एक श्लोक सुनाकर यहां हम कथा विराम करने का प्रयास करेंगे। ये श्लोक बड़ा सुंदर है, जिसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन आता है। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम नत त्रिपुर दृशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। यहां पर मथुरा के जो महिलाएं हैं वो वर्णन कर रही हैं। यस्य मतलब इनको, आननम उनका जो चेहरा है बहुत सुंदर है, श्री कृष्ण का चेहरा। मकर कुंडल चारु कर्ण, चारु मतलब बहुत ही सुंदर, और उनके कर्णों में मकर कुंडल है, कुंडल उनके मकर के आकार में है। भ्राजत कपोल, उनके जो कपोल हैं, गाल हैं, बहुत चमक रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। सुभगम बहुत ही नाजुक है उनका चेहरा। सविलास हासम, और रमा करते करते उनका हास्य जो है, उनकी मुस्कान जो है वो भी बहुत आकर्षक है। नित्योत्सवम न त्रिपुर दृशभि पिबंत्यो, तो उनका दर्शन जब कोई करते हैं दृशभि, तो उनका सुंदर रूप का पान अपने आंखों से सभी करते हैं। पिबंत्यो दृशभि, और ये दृश्य जो है नित्य उत्सवम, तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ये एक रोज का उत्सव है। ऐसे नहीं कि साल में एक बार जन्माष्टमी है तो एक दिन साल में उत्सव हुआ। जो वृंदावन के निवासी थे उनके लिए हर क्षण एक उत्सव था, नित्य उत्सवम, क्योंकि हर क्षण वो भगवान श्री कृष्ण को देखते थे, या अंदर से या बाहर से। जब भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने होते तो प्रत्यक्ष रूप से इन बाहरी नेत्रों से भी वो देख सकते, और जब श्री कृष्ण वन में चले जाते गायों को लेकर, तो अपने अंतःकरण में उसी रूप को वो धारण करते और उस रूप का दर्शन करते। तो वृंदावन के निवासियों के लिए हर एक क्षण उत्सव का क्षण था। नार्यो नराश्च मुदिता कुपित निमेश्च, कुपित, लेकिन अब सारे नर नारी हैं वो बहुत कुपित हो गए हैं। क्यों कुपित हो गए? निमेश्च, किससे कुपित हुए हैं? निमेश्च, फिर भी वही बात, निमेश मतलब जो पलकों को बनाने वाले हैं, क्योंकि बार बार इन आंखों को बंद करना पड़ता है। वैसे इन आंखों का उपयोग तो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को सदैव देखने के लिए होना चाहिए, परंतु न जाने कैसे सृष्टिकर्ता ने ऐसी भूल कर दी कि हमारे इस सुंदर रूप का दर्शन करने में बाधाएं आ जाती हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में अन्य ग्रंथों में भी जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन है, इसलिए तो उनका नाम है कृष्ण सर्व आकर्षक। तो ये चार विशेष गुण है 61 से 64 जो कि केवल अवतारी कृष्ण श्याम सुंदर गोविंद वृंदावन के कृष्ण में है, और जो कि वैकुंठवासी नारायण में भी नहीं है। इसके साथ श्री रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख 64 गुणों का वर्णन समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम पुनः महाराज से निवेदन करेंगे कि वो यहाँ बैठें और वो आपके प्रश्नों का उत्तर दें। तो 5-10 मिनट और बैठिएगा, आप इतना ही बैठे हैं तो और 10 मिनट बैठिए और प्रश्न उत्तर का भी आनंद आप लीजिए। हरे कृष्णा। आइए।
Thank you.
था। प्रश्न ये है, महाराज ये पूछ रहे हैं कि ये जो लीला माधुरी का गुण है, वैसे 61वां है, यहाँ पर 62 है, रूप गोस्वामी के क्रम में 61 है, तो ये लीलाएं क्या केवल रास लीला है या रास लीला और बाल लीला है या और भी लीलाएं हैं? वैसे वृंदावन में जितने भी सारे लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने प्रदर्शित किए वो सारे लीला माधुरी में आते हैं, क्योंकि ऐसी लीलाएं उनमें अन्य जगह में नहीं किए, लेकिन विशेष करके बाल लीला और रास लीला, और इन दोनों में से विशेष करके रास लीला, ऐसे रूप गोस्वामी पाद कहते। एक जगह श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लीला माधुरी मतलब विशेष करके बाल लीला, और एक जगह यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में वो रास लीला का वर्णन ज्यादा करते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये सारे बाल लीलाएं और रास लीला, श्रृंगार रस की लीलाएं, ये सब बहुत मधुर हैं, अपने अपने जगह में ये सारी लीला बहुत आस्वादनीय है। हाँ जी, ये अवतारी कृष्ण और अवतार कृष्ण ये कहां लिखा गया है? ये जीव गोस्वामी के षट संदर्भों में ये विश्लेषण पाया जाता है, और कई बार प्रभुपाद जी भी अपने भागवत के तात्पर्यों में लिखते हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को जब उपदेश देते हैं तो इसमें इस बात को वो विस्तार में वर्णन करते हैं अवतारी कृष्ण के बारे में। चैतन्य चरितामृत में आप इसको भी पढ़ पाएंगे। प्रश्न ये है कि जैसे अवतारी कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं जाते, तो जो मथुरा और द्वारका में जाते हैं वो वासुदेव कृष्ण है, अवतार कृष्ण है, अवतारी नहीं, तो उसी प्रकार बलराम, कौन से बलराम जाते हैं मथुरा द्वारका? वैसे मूल बलराम तो यहीं रहते हैं कृष्ण के साथ, वो कभी यहां से नहीं जाते, वो भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते, तो जो जाते हैं मथुरा और द्वारका वो है संकर्षण। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर वासुदेव हैं, तो उनके अंदर से वासुदेव फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार से बलराम से जो संकर्षण है वो चले जाते हैं, और ये परिवर्तन अक्रूर घाट में होता है। तो जो द्वारका आदि लीला बलराम जी करते हैं वो संकर्षण का रूप है उनका, और राधा रानी के बारे में भी, हाँ, अगर श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो राधा रानी कैसे छोड़ के जाएंगे? वृंदावन छोड़कर क्यों नहीं जाते भगवान अवतारी कृष्ण? क्योंकि यहां पे ब्रजवासी है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना तीव्र है, इतना मीठा है, कि इसलिए भगवान श्री कृष्ण छोड़ नहीं पाते हैं, और ब्रजवासियों में से सर्वश्रेष्ठ है गोपियां, गोपियों में से सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी, तो अगर राधा रानी छोड़ के चले जाती वृंदावन तो श्री कृष्ण भी छोड़ के चले जाते, अगर श्री कृष्ण छोड़कर नहीं जाते हैं इसका मतलब राधा रानी भी छोड़कर नहीं जाती, तो फिर कौन सी राधा रानी है जो कुरुक्षेत्र में चली गई ब्रजवासियों के साथ? संयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा, दो राधा रानियों का उल्लेख आता है शास्त्र, तो फिर वो भी राधा रानी की विस्तार है जो जाती है, लेकिन मूल राधा रानी तो केवल ब्रज में ही निवास करती है वृंदावन में। ठीक है, अगर अवतारी कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं तो गोपियां किस बात का विरह कर रही हैं? यही बात है ना, अच्छा प्रश्न है। तो इसमें ये प्रकट और अप्रकट लीला का प्रश्न आता है। जब भगवान श्री कृष्ण अक्रूर घाट की लीला तक वृंदावन में प्रकट लीला कर रहे थे, भगवान की लीला तो नित्य है, वृंदावन में नित्य रूप से भगवान की लीला विद्यमान है, कभी भी बंद नहीं होती भगवान की लीला, परंतु केवल कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी अप्रकट रूप में रहता है। प्रकट मतलब क्या है कि साधारण व्यक्ति भी इन आंखों से भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। उस समय भी जितने भी वृंदावन के निवासी थे, चाहे वो भक्त थे या असुर थे, वो सब देख पाए भगवान श्री कृष्ण को, प्रकट रूप से देख पाए, साक्षात उनका दर्शन कर पाए, उनकी लीलाओं को देख सके। परंतु जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को ले चले गए, लेकर गए मथुरा, उसके बाद में अप्रकट रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीला यहां पर जारी रही। ये एक बात है। दूसरी बात है, लेकिन गोपियां तो प्रकट रूप में यहां पर थी, तो गोपियां अपने अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण को देख रही थीं, लेकिन प्रकट रूप से उनका संग नहीं कर पा रही थीं, इसलिए यह विरह था उनका। और इस विरह का जो शोक है वो इतना एक भयानक अग्नि के समान उनको प्रतीत होता था, इसलिए वो बहुत तड़प तड़प के यहां पर वृंदावन में अपने दिन और रात काटती थी। एक दृष्टि से देखा जाए तो गोपियां और अन्य ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, परंतु प्रकट लीला के दृष्टि से देखा जाए तो ये विरह होता है, जिस विरह से उनका जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। इसलिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, विरह की लीलाएं करते हैं, जिससे कि प्रेम बढ़ जाए, और विरह के बाद जब मिलन हो जाए तो फिर वो मिलन का स्वाद भी और भी आस्वादनीय हो जाता है। आप कुछ इसमें और प्रकाश डालना चाहेंगे महाराज? इस उत्तर को आप और विस्तार में बताना चाहेंगे? आप यहीं आकर बताइए। नहीं नहीं, आइए आप।
अरे सर, हम लोग उसी फिर सब्जेक्ट मैटर पर ही रहेंगे। और जिन्हें बताया था कि वृंदावनम पर त्यज्य पादमेकम न गच्छति, कृष्ण के लिए कि कृष्ण वृंदावन का परित्याग करके नहीं जाते हैं, गए तो वासुदेव कृष्ण गए जो अक्रूर घाट पर जहां मिलन स्थान है, तो वृंदावन का मथुरा वृंदावनम पर त्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान कृष्ण वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, इसे कहा जाए कि उच्च स्तर का प्रश्न जिज्ञासा प्रभु जी ने किया कि यदि कृष्ण वृंदावन का परित्याग करके नहीं जाए गए नहीं जाते हैं, तो प्रकट लीला में देखा जाता है कि गोपियां राधा रो रही थीं, पूरे ब्रजवासी रो रहे थे क्योंकि अक्रूर जी ले गए। तो यह कैसे हुआ, जब कृष्ण यहीं है वृंदावन में रह रहे हैं, तो विरह की सेपरेशन का तो दुख उनको क्यों झेलना पड़ा? प्रश्न ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न सेल्फ बार इतना उच्च स्तर का है, जब हम प्रश्न को ही समझ जाते हैं तो हम सेल्फ रियलाइज पर्सन हो जाएंगे। प्रभु जी ने बढ़िया से समचिन ढंग से उत्तर दिया, मैं इसको थोड़ा विस्तार के लिए और आप लोग कथानक वर्णन करता हूं। रूप गोस्वामी जी एक प्रेम के जो विकार है, प्रेम जिसमें होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है उसके भावनाओं में शरीर में, तो उसका एक प्रेम वैचित्य शब्द है। यह अवस्था है कि एक प्रेमी भगवान से विरह की अनुभूति करता है, उसे बहुत दुख होता है, विरह का दुख होता है, लेकिन यह होता है भगवान की उपस्थिति में ही। प्रेम वैचित्य के जो जैसा रूप गोस्वामी वर्णन करे, यानी भगवान नहीं है तो जो दुख होता है उसको प्रेम वैचित्य नहीं कहते हैं। कृष्ण है साथ में, बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, और हम लोग को जो दुख होता है उसको प्रेम वैचित्य कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा स्पष्ट करने के लिए कथा का वर्णन व्रत करते हैं। आप लोग जानते होंगे बरसाना के बाजू में एक जगह है प्रेम सरोवर, आप लोग यदि गए होंगे दर्शन करने तो बरसाना और नंदगांव के बीच में, बरसाना के ज्यादा नजदीक है और प्रेम सरोवर नाम है। तो उस प्रेम वैचित्र्य का एक थोड़ा सा स्पष्ट झलक हमको मिलता है उस कथानक से। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर थे, लीला कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी भी थी और कृष्ण बैठे थे बंसी वादन कर रहे थे। उस समय तो प्रेम सरोवर नहीं था उस स्थान पर, कम से कम प्रकट नहीं था। और श्रीमती राधा रानी भगवान के गोद में सिर रहकर सो रही थी, थोड़ा उनको नींद आने लगी तो भगवान के गोद में अपना सिर रख दिया, श्रीमती राधा ने सो रही थी। उसी क्रम में क्या हो कि श्रीमती राधा ने सहसा चित्कार करके, जैसे कोई बहुत सा ऐसा दृश्य आ गया, ऐसा दुख आ गया, रोने लगी, एकदम चीख पड़ी और बैठकर फिर वो रोने लगी। इसके बाद कृष्ण पूछने आखिर दुख का क्या कारण, क्या हो गया तुम, क्या हो गया इतना रोने का? तो श्रीमती राधा ने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। तो वो स्वप्न क्या है? तो उन्होंने कहा कि और वही स्वप्न मेरे दुख का कारण है। स्वप्न क्या है? तो मैंने स्वप्न में देखा अभी जब सो रही थी कि आप वृंदावन का परित्याग करके अन्यत्र चले गए हैं। तो भगवान ठीक है, स्वप्न तो स्वप्न होता है, अब दुख का क्या कारण है? मैं तो हूं साथ में हूं, गया तो नहीं हूं, चला गया होता तो दुख होता, लेकिन अब तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तो श्रीमती राधा ने कहा कि हमारे दुख का यह कारण है कि यह स्वप्न से कुछ ऐसा हमें संकेत मिलता है कि शायद आप कहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो श्रीमती राधा ने रो ही रही थी, रो रही थी, रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि कृष्ण चले संभावना मात्र से, कृष्ण तो है बाजू में, इतना रो रहे। तो उनके श्रीमती राधा रानी के रोदन को देखकर कृष्ण भी रोने लगे। भावी विरह की संभावना करके कृष्ण भी रो रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का साथ छूट गया था, छूट जाएगा। श्रीमती राधा रानी रो रही थी कृष्ण का, और यह तब होता है जब दोनों बिल्कुल बाजू में थे और उसी समय जब उनके आंखों से जो प्रेमाश्रु निकले श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, तो उसी से अश्रुओं से अभी जो प्रेम सरोवर उसका निर्माण हुआ। तो श्रीमती राधा रानी गोपियां विरह की भावना हुई तो यह जरूरी नहीं कि चले जाए तभी होगा, रहते हुए भी कृष्ण साथ रहेंगे और उसी समय जो साथ रहते हुए वियोग की भावना करके जो दुख होता है उसको प्रेम वैचित्र्य शब्द से रूप गोस्वामी जी कहते हैं। तो श्री कृष्ण यहां थे फिर भी विरह की अनुभूति गोपियों में हो रही थी। और रस शास्त्र का रूप गोस्वामी जहां वर्णन करते हैं यह कहते हैं कि संयोग में जो भगवान के एसोसिएशन में साथ रहकर जो हम लोग प्रेम को ड्राइव करते हैं, चाहे गोप ब्रजवासी लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उससे भी कई गुना अनुभूत सुख की अनुभूति उनके विरह जनित दुख में होता है। यह थोड़ा अगेन कंट्राडक्शन जैसा देखकर, भगवान के उपस्थिति में भगवान को स्पर्श करके, भगवान को आलिंगन करके, भगवान से बातचीत करके जिस सुख का, आध्यात्मिक सुख की अनुभूति ब्रजवासी लोग करते हैं, उस सुख को कई गुना ज्यादा यह भावना करके कि भगवान यहां नहीं है, विरह का जो दुख होता है तो दुख से सुख की अनुभूति कर लेते हैं, इसीलिए हायर रस समझा जाता है विरह का दुख। और इसी के आस्वादन के लिए स्वयं भगवान भी एक बार तरस जाते हैं, ललायित रहते हैं। देवानंद प्रभु कह रहे थे कि भगवान अपने ही रूप को देखकर उसको आलिंगन करने के लिए, छूने के लिए, बातचीत करने के तरस जाते हैं। और इतना उनकी तरस हुई कि स्वयं भगवान श्री कृष्णेश्वर विचार करने लगे कि मेरा इतना सुंदर रूप है जिसको देखकर मैं स्वयं मोहित हो रहा हूं। तो जो श्रीमती राधा रानी गोपियां हैं जो हमको हमारा आलिंगन करके, विरह की अनुभूति करके जो सुख का आस्वादन करती हैं, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस विरह के भाव को लेकर उपस्थित हुए। तो संयोग की अपेक्षा वो हायर टेस्ट आध्यात्मिक जगत में माना जाता है। और यहाँ इसके लिए जरूरी नहीं कि भगवान जाए तभी होगा, रहते हुए भी असंभव हो सकता है। इसको शास्त्रीय भाषा में प्रेम वैचित्ती कहते हैं। प्रेमी के अनुपस्थिति में जो विरह का दुख होता है, ऐसे गोपियों यहाँ कृष्ण गए नहीं, लेकिन वो हायर संयोग की अपेक्षा जो हायर रस है, हायर टेस्ट है, उसकी अनुभूति करने के लिए उनको महसूस होता है कि कृष्ण वृंदावन का को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। वनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी स्टेप आउट ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाने की नहीं, ऐसा नहीं कि एक पैर उधर रखेंगे एक पैर इधर रखेंगे, ऐसा भी नहीं करते हैं। सीमा है तो बस उसी का अंदर रहते रहना। तो जहां तक भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण ही है, तो कृष्ण को देखा गया कि नवद्वीप के गलियों में कीर्तन करते हुए, अथवा जगन्नाथपुरी के गंभीरा मंदिर में निवास करते हुए, अथवा दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए श्रीरंगम भी चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही उस रूप में गए। तो इसको कैसे हम समझें कि वो नहीं देखा गया कि बाहर जा ही रहे हैं, श्रीरंगम भी गए, जगन्नाथपुरी में गए, नवद्वीप में गए। तो यह भगवान की अचिंत्य, जिसे हम शक्ति कहते हैं, अचिंत्य मतलब कि हमारे मन और बुद्धि में वो आ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। हम किसी भी लॉजिक का प्रयोग करेंगे तो समझ में नहीं आ सकता। तो इसको अचिंत्य शक्ति, इतना विश्वास कीजिए कि भगवान नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु कभी भी वृंदावन का प्रत्याग करके एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए नहीं कहेंगे। जहां तक मायापुर के विषय में, तो सब आप लोग जानते होंगे कि मायापुर और वृंदावन एकदम इसमें भेद नहीं है। किसी भी प्रकार का एक धाम के निवास करते समय उसे एक अपराध माना जाता है, धामापराध इसे कहते हैं। मन में थोड़ा भी विचार भी आता है कि नवद्वीप और मायापुर भिन्न है, तो हम लोग मन में एक अपराध जैसा उत्पन्न होने लगता है। यह अपराध है, धामापराध, और इससे बचना चाहिए। यदि हम धाम के माधुर्य का, इसके सौंदर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, तो हमको धामापराध से ही बचने का प्रयत्न करें। तो नवद्वीप मायापुर अभिन्न है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो अन्य स्थानों पर, हम लोगों को ऐसे चैतन्य महाप्रभु तो गए नहीं, भगवान गए नहीं, लेकिन हम लोगों के समझ में नहीं आता, पता लग रहा है कि भगवान दूसरे जीवी गए, तो उसको हम भगवान की अचिंत्य लीला समझकर समाधान कर लेना चाहिए कि भगवान, और इस पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। रूप गोस्वामी जितना रस शास्त्र के ज्ञाता, रूप गोस्वामी का जीव गोस्वामी इस बात को खूब बढ़िया से डिस्क्रिप्शन दिया। तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं समाधान कर दिया, लेकिन आपको कोई क्लू दे दिया कि यह भगवान की अचिंत्य लीलाएं हैं, जो हम किसी लॉजिक का प्रयोग करके, किसी तर्क का प्रयोग करके समझ नहीं सकते। दूसरा कोई प्रश्न है तो समाप्ति करते हैं। ठीक है, तो हम आज कथा का विश्राम यहां करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, हरे कृष्ण।